ओम शांति। आज आपने टाइम टेबल देखा होगा, डॉक्टर ममता, बड़ी उम्मीद रही होगी कि कोई प्लेजेंट फेमिनिन पर्सनैलिटी, और यहां आए तो फिर देखा वही द सेम ओल्ड गुलियानी सिटिंग देयर। कहना पड़ता है, क्या करें अब। कि सीनियर मोस्ट डज इट मीन सीनियर मोस्ट मेक्स अ समबडी बेस्ट। लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फॉर इन मे, ऑल दो इट फॉल्स एंड डाइज दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। यू नो पोएम अगर ये पढ़ी हो, वो एक दिन का लिली का फ्लावर कितना सुंदर लगता है, और उसके सामने 300 साल तक रहने वाला बूढ़ा सा वृक्ष किसी को अच्छा लगेगा? नहीं। चले चले, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई टेक इट विद ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं, तो कभी कभी मन में लगता भी है अरे अच्छा, सच मैं अच्छा टीचर हूं, तो कई बार अपने आप को नहीं, वो शाबाश देने की स्टेज तो अभी नहीं आई है, क्योंकि विश्वास नहीं हो पाता ना कई बार, कि हमें तो लगता है कि हम तो वी आर वेरी ऑर्डिनरी सिंपल एंड नॉट नोइंग मच विद सो मैनी लैकुना एंड शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस। हमें तो लगता है किसी ना किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, और आप इसी में ही खुश हो जाते हैं। कितने आप जेंटल हैं, देखो तो आप डिमांड ही नहीं करते। बहन जी इधर सीट है, बहुत सीट है अभी, तुम आ जाओ। तो आप यू आरंट दैट डिमांडिंग, तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन एक बात और है, आपने वो लेक्चर सुना क्वालिटीज पर, सेल्फ एस्टीम पर और वैल्यूज पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सच बात तो ये है बहन जी, पता नहीं लगता कि आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब एरोगेंस में बदल जाएगा, पता ही नहीं लगता। यानी बहुत बार हम लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है या एरोगेंस है, ये मेरी सेल्फ एस्टीम है या इंसल्टिंग द अदर्स है। वो कई बार देयर इज वेरी फाइन ए सॉर्ट ऑफ सिल्की लाइन बिटवीन द टू, बहुत पतली सी हल्की सी रेखा है, इतनी पतली कि बहुतों को तो नजर ही नहीं आती है वो। और कब वो एरोगेंस की तरफ चले गए, कब दैट इज ईगो उनकी उभर कर आ गई, और उसी को वो सेल्फ एस्टीम कहते रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तभी तो मैं ये बात कर सकता हूं। ये नहीं पता लगता कि किसको चोट पहुंचा रहा हूं, किसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूं। होता है कई बार, नहीं नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सो इसीलिए वो बेंजी वो नेगेटिविटी नहीं है, वो इट्स बीइंग अलर्ट, इट्स बीइंग अलर्ट। सो इसीलिए बाबा भी कहता है ना, दिमाग को ढीला नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखो, जरा सा छोड़ा तो फिर ये आपको उड़ा के ले जाएगा, एंड देन यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप। वो कटी पतंग की तरह कहां जा गिरेंगे कोई पता नहीं है। नहीं वो गिरा नहीं देगा, वो तो कटी पतंग अपने आप गिरेगी, कोई गिराता नहीं उसको। देखिए उसी तरह से मत ब्लेम दीजिए सोसाइटी को, भगवान को, भाग्य को ब्लेम मत दीजिए। ये आप स्वयं जब कटते हैं सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस या क्वालिटी से, तो वो कटी पतंग की तरह खुद गिरते हैं जाकर। ये नहीं कहना कि उसने गिराया, इसने गिराया, उसने किया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चले छोड़े, बात फिर भी हमने वैल्यूज की करनी है आज भी, छुटकारा तो नहीं है। और अच्छा है हम भी, वो एक कम्युनिस्ट थियरी है कि जो बात पक्की करनी हो ना, वो रिपीट हर वक्त करते रहो, वो बाजा बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो। एक स्टेज आ जाती है कि जब आप सुबह उठेंगे ना, बाजा बजे ना बजे, आपके मुंह से आवाज वही निकलती है, वो गीत वही निकलता है। सुबह सुबह उठते हैं ना, हर एक के मुंह में एक कोई ना कोई गीत की लाइन होती है। आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो रोज होता है, तो कोई ना कोई लाइन होती है और वो सारा दिन गुनगुनाते रहते हैं, घूमती रहती है, घूमती रहती है। सो इसी तरह हम भी चाहते हैं ये वैल्यूज का बाजा जो बजा रहे हैं हम रोज रोज, तो वो जब आप सवेरे हर रोज उठने लगे तो वो कोई ना कोई वैल्यूज का जो है वो बाजा आपकी जुबान से भी बजने लगे और फिर सारा दिन उसी को बजाते रहे आप, ये स्टेज आ जाएगी। अगर नहीं आई तो आ जाएगी, आ गई है तो बहुत अच्छा है। दैट इज, चलिए, इट इज कोर्स 3 यूनिट 3, कोर्स 3 यूनिट 3, वैल्यूज इन एवरीडे लाइफ। देखिए, अगर आप किताब को छोड़ दें जो आपकी बुक कहती है, और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, अपने इमेजिनेशन को ढीला छोड़ें, दिमाग को उड़ने दें, सोचने दें और नजर को चारों तरफ घुमाएं और देखें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बात हम वैल्यूज की करते हैं, होनी चाहिए होनी चाहिए। आप में से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि सर, हम में से किसी ने कहा है वैल्यूज नहीं होनी चाहिए? किसी ने कहा है? फिर आप क्यों बार बार जोर दे रहे हो वैल्यूज होनी चाहिए? और कोई भी नहीं कहता वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। कोई कहेगा? आप में से किसी से हाथ उठवा के देखें कि कोई ये कहे कि वैल्यूज की इंपॉर्टेंस नहीं है, हाथ खड़ा करे, कोई नहीं करेगा। और ये तो छोटा सा ग्रुप है, लाखों का ग्रुप भी होना तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई नहीं चाहता कि वैल्यूज ना हो, कोई नहीं चाहता कि जीवन हमारा वैल्यू बेस्ड ना हो, और उसके बावजूद भी समाज में देखो क्या हो रहा है। यानी सारे चाहते हैं वैल्यूज हो, और ढूंढने लगे तो वैल्यूज है ही नहीं, मिलती नहीं है। व्हाट एन आयरनी, एवरीबडी वॉन्ट्स इट, एवरीबडी। किसी को भी आप उठाकर बात करें तो वैल्यूज पर लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं, लेकिन वही अगर अपने घर में, अपने समाज में, और अगर थोड़ी हिम्मत हो तो अपने अंदर में झांक कर देखें तो लगेगा कितना अकाल है वैल्यूज का, है ही नहीं वैल्यूज, बहुत कम है। और जो भाई बहन बाहर से हैं वो ये ना सोचे, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना लाएं कि हम तो ब्रह्मा कुमारीज के यहां बैठे हैं, इनके यहां तो वैल्यूज का भंडार है और हम तो बिल्कुल खाली हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, घबराएं नहीं, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड मी, जब मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब आप समझते हैं। सो देखें, इन फैक्ट द प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ क्राइसिस इन वैल्यूज। जैसे मैंने अभी कहा कि वैल्यूज का अकाल पड़ गया है, इधर उधर देखें चारों तरफ कहीं वॉयलेंस है, कहीं पावर्टी है, कहीं हिपोक्रेसी है, हर एक अपना नकाब ओढ़े घूमता है वैल्यूज का, और वो उतारने नहीं देगा आपको, जोर लगा ले चाहे। इतना बड़ा आडंबर हम जीवन के साथ करते हैं और जीवन को ही एक आडंबर बनाकर बैठ जाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ये आता है कि जब इतना कुछ है, शायद आप ही मेरे से पूछ सकते हैं कि सर, जब आपको पता है, हम तो इस साल एडमिशन लिया है, हमें तो चलो शायद नहीं पता था, आप इतने सालों से पढ़ा भी रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते रहे हैं, फिर आपने किया क्या अब तक, क्या करते रहे अब तक? आपको तो पता था ना वैल्यूज नहीं है, फिर? यानी हम भी वही, वो क्या कहते हैं, नाटक करते रहे, या थोड़ा और एक इससे भी नीचे शब्द इस्तेमाल करूं तो नौटंकी करते रहे हम भी, स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, घंटे दो का भाषण दे जाते हैं, समझते हैं हमने वैल्यूज पैदा कर दी, और वैल्यूज होती नहीं क्योंकि जमीन पैदा ही नहीं की हमने, तैयारी नहीं की हमने। आज भी था ना धरनी के बारे में मुरली, अगर आपने, अब ऐसे कितने लोगों ने मुरली सुनी आज, वेरी गुड, सारे सुनते हैं, अरे वैल्यूज तो हैं, वैसे ही मेरे को गलतफहमी हो गई, वैल्यूज नहीं है। आज भी था ना, बाबा ने कहा ना धरनी धरनी, और धरनी बाबा ने कहा आज के जमाने में धरनी तैयार करना बड़ा आसान हो गया है। लो और कितनी अच्छी बात हो गई ना, पहले सोचते थे कि धरनी तैयार करना तो बड़ा लंबा काम है, टाइम लग, और आज के साइंटिफिक मेथड्स इतने हो गए, धरनी तैयार करना बड़ा आसान है। तो हम भी वैल्यूज के लिए धरनी तैयार कर रहे हैं ना, ये हो गई ना तैयार, कितनी आसान है। देखिए चारों तरफ जो हम देख रहे हैं वैल्यूज की कमी है, जैसे मैंने कहा वॉयलेंस है, हिपोक्रेसी है, और आर्किक सोशल वैल्यूज हैं जो समाज की कुंठाएं बनी हुई है ना, जो रिचुअल्स और टैबूज हमने बना रखे हैं, उन सब से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि हम वैल्यूज की जो है एजुकेशन दें अपने बच्चों को, प्रोवाइड एजुकेशन इन वैल्यूज जितना ज्यादा हम दे सके। जैसे देखिए हम कई बार कह देते हैं ये करो ये नहीं करो, वो नहीं होता, कारण कि हम वृक्ष के पत्तों को जो है कपड़े के साथ या पानी के साथ धो रहे हैं और हमें लगता है पत्ता हरा हो गया, अब रहेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन ये नहीं पता जड़ से खुराक क्या आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है। दूसरे दिन सवेरे फिर उठते हैं, अरे पत्ता तो पीला हो रहा है, कल तो मैंने चमकाया था, सो वो नहीं चमकता ना, वैसे उसकी जड़ को सुधारना है ना, उसकी जड़ के अंदर जो कीड़े लगे हैं उनको हटाना है, दवाई देनी है, उनको खोदना है, कुछ भी व्हाटएवर। सो एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन इन वैल्यूज। और एजुकेशन इन वैल्यूज के लिए भी फिर यही बात आता है कि आप एजुकेशन देना चाहते हैं ना, वैल्यूज भी आपको पता है, हमने 50-50 वैल्यूज का सेट आपके सामने रख दिया, और ये ना सोचें कि हो गया, निश्चिंत हो गए, एमएससी में आएंगे ना, फिर हम आपको कभी 15 का सेट, 20 का सेट, किसी और टॉपिक में 40 का सेट, फिर वहां कई वैल्यूज के सेट आपको पकड़ाएंगे, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये सस्ता है, ये महंगा है। तो यानी वैल्यूज तो बहुत हैं, लेकिन प्रश्न यही आता है कि उन वैल्यूज को हम तैयार कैसे करें, उनको बनाए कैसे, व्हाट आर द फंडामेंटल्स, या किन बातों की तरफ ध्यान दें जिससे जो है वैल्यू सिस्टम तैयार हो जाए। मुझे ऑनेस्टी नहीं चाहिए, मुझे कॉर्डियलिटी नहीं चाहिए, मुझे हॉस्पिटैलिटी नहीं चाहिए, मुझे लव पीस नहीं चाहिए, मुझे वो एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर ये अपने आप पैदा हो जाए, मुझे वो एनवायरनमेंट चाहिए जहां सिखाना ना पड़े ऑनेस्ट बनो, ऑनेस्टी अपने आप आए, कॉर्डियलिटी अपने आप आए उसके अंदर जो है। उसके लिए कई बातों पर हमें ध्यान देना है, कुछ हटाना है, कुछ बनाना है, कुछ जोड़ना है। तो मेनली देर आर 4 मेजर फैक्टर्स जिनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो समाज के अंदर, सिस्टम के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर एक वैल्यू बेस्ड लाइफ पैदा की जा सकती है, वैल्यू से नहीं, वैल्यू बेस्ड लाइफ पैदा की जा सकती है। उसमें वो 4 फैक्टर्स जो हैं, सबसे पहले बिल्डिंग एन एथिकल पॉलिसी, दैट इज बिल्डिंग एन एथिकल पॉलिसी, पहली बात। यानी अब जैसे देखिए आप कहेंगे एथिकल पॉलिसी, एक नैतिक सिद्धांत, तो अगर वो, दिस इज ब्रॉड थिंग ना, इसमें बहुत कुछ, वैल्यूज कितनी ही आ जाएंगी उसके अंदर, हम उस वैल्यूज की बातें नहीं कर रहे हैं, मैं तो एक सिस्टम तैयार करने की बात कर रहा हूं। जैसे देखें ना, हम कई बार एक माहौल पैदा करते हैं, एक जमीन तैयार करते हैं, और उसके बाद जमीन तैयार होने के बाद फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर जो आपने फ्लावर बेड तैयार किया है इसके अंदर कौन कौन से बीज डालते हैं, गेंदा डालते हैं, गुलाब डालते हैं, या कुछ और पौधे तैयार करते हैं, वो सारे उगते हैं उसके अंदर। ये नहीं कि ये सिर्फ गुलाब के लिए है और कोई पौधा उगेगा नहीं, कि यहां पर ऑनेस्टी का गेंदा उगेगा दूसरा नहीं आएगा, यहां लिल नो नो, एक ऐसा हमने एथिकल पॉलिसी तैयार करनी है लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति, जो अपने आप वैल्यूज को इंस्पायर करे, अपने आप पता ही ना चले कब वैल्यू, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पता ही नहीं चलता कब एरोगेंस आ जाती है। देखिए आदमी जानता है, कोशिश करता है मेरे अंदर एरोगेंस आ जाए, नहीं, क्योंकि वो व्यक्तित्व ऐसा बन गया, माहौल अपना अपने लिए ऐसा तैयार कर लिया कि एरोगेंस आ जाती है और स्वयं को पता ही नहीं लगता कि मैं एरोगेंट हूं, मैं डिसऑनेस्ट हूं। और फिर हम कहे नहीं ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं क्लास मिस नहीं करता सर, बिल्कुल नहीं, क्या करूं, ओ किसी ने बुलाया ना, कोई रिश्तेदार आ गया, आप उसको अटेंड तो करना है ना, क्या करूं मैं, वरना मैं क्लास थोड़ी मिस कर, मैं लेट नहीं होता कभी भी, मैं टाइम पे आता हूं। लेकिन मुझे रास्ते में एक दोस्त मिल गया ना कई सालों बाद, उसे हेलो करनी पड़ी, सो पता ही नहीं लगता मैं कब डिसऑनेस्ट हो गया, कब पता ही नहीं चला ना मुझे। सो एक ऐसी पॉलिसी तैयार करनी है जो मुझे डिसऑनेस्ट ना होने दे, जो मुझे अपने रास्ते से भटकने ना दे। इसी तरह से सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इन चारों को, पहली बात थी बिल्डिंग एन एथिकल पॉलिसी, सेकंड है सोशल जस्टिस, एक सोशल जस्टिस का माहौल हो। आजकल तो हम किसी भी बात को कहीं भी ला के नाम पर, किसी पिटी के नाम पर, किसी जरूरत के नाम पर उसको कर लेते हैं और फिर हमें लगता ही नहीं कि ये सोशल इनजस्टिस हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है। यानी वो मुझे कई बार लगता है कि आप इसको नेगेटिव में ना ले जाएं, वो हमने लैम एंड द वोल्फ की कहानी पढ़ी थी ना बचपन में, हम पढ़ते थे, हमें क्लासों में पढ़ाई जाती थी कि एक भेड़िया था और एक भेड़ का बच्चा था, वो तालाब पर पानी पी रहा था और भेड़िये को लगा कि ये खाने बहुत नर्म है, खाने में मजा आएगा, तो अब कैसे उस पर अटैक करे। तो पहले तो उसको कहा कि देखो तुम पानी पी रहे हो, सारा गंदा पानी मेरी तरफ आ रहा है और मैं पानी पी रहा हूं, मुझे गंदा पानी। उसने कहा जी नहीं, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मैं तो नहीं गंदा कर रहा। ओके, तुमने मुझे पिछले साल गाली दी थी ना, कहता मैं तो एक साल का ही नहीं हूं। फिर तुम्हारी मां ने दी होगी गाली, तो उसको खा लिया। कुछ ऐसा नहीं करते हम समाज में, ऐसा नहीं हो रहा कि प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अब हमने कुछ कर लिया, मेरिट है नहीं है, ओके दीज सीट्स आर फॉर यू, दीज सीट्स आर फॉर देम, दीज आर नॉट फॉर एनीबडी, कर लिया। अब किस लिए, इनजस्टिस हुआ था पीछे पीछे, यानी जब बहुत पहले अशोका के टाइम, चंद्रगुप्त के टाइम, समाज के कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ना, उनके साथ अत्याचार किया गया ना, तो उसको बराबर तो करना है ना, अच्छी बात है करें, बराबर करें, लेकिन इस बराबरी में जो दूसरे रह गए उनका क्या, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत मेरिटोरियस थे, डिजर्विंग थे, फाइनेंशियली डिजर्विंग थे, अदरवाइज ओके व्हाटएवर, उनका क्या। आई मीन जस्टिस इज गुड, बट जस्टिस नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इनजस्टिस टू अदर्स। ये नहीं कि जस्टिस नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस हुआ, लेकिन मेरे साथ जस्टिस करते करते आपने दूसरों के साथ इनजस्टिस कर दिया, तो वुड दैट बी ए गुड सोशल जस्टिस पॉलिसी। नहीं, जस्टिस हो बट फॉर द सेक ऑफ जस्टिस किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, दैट वुड बी मोर इंपॉर्टेंट, अगर हम वैल्यूज बेस्ड जीवन जीना चाहते हैं तो। हां, अगर मुझे अपना हित चाहिए तो फिर वहां वैल्यू कहां है, वो तो स्वार्थ है ना, वो तो मेरी सेल्फिशनेस है ना, मुझे चाहिए, किसी को मिले ना मिले मुझे चाहिए, कोई जिए या मरे मुझे क्या लेना, मुझे जीना है, दैट्स ऑल। तो दैट वुड नॉट बी वैल्यू, सो सोशल जस्टिस वुड बी द सेकेंड एस्पेक्ट। थर्डली इज आर्किक सोशल वैल्यूज, अब आर्केक आर्केक रूढ़िवादी क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी जैसे मैं कह रहा था पुरानी पुरानी प्राचीन एंशियंट कुछ भी कह लें हिंदी क्या बोलती है आपकी सही है ओके थैंक यू मुझे हिंदी आती है गुड या तो देखिए आर्केक सोशल वैल्यू पुरानी सोशल वैल्यूज देखिए कितनी सी कर रहे हैं मेरे माँ बाप करते थे उनके माँ बाप करते थे उनके माँ बाप करते थे इसीलिए हम करते हैं कोई सवाल नहीं करता कोई पूछता नहीं अरे इसको छोड़ते क्यों नहीं एक बाप ने बच्चे को थप्पड़ मारा जोर से बच्चा देखता रहा कोई गलती नहीं की मैंने थप्पड़ क्यों पड़ा तो वही बात उसने पूछा पापा आपने अरे चुप हमारे माँ बाप हमें कितना मारा करते हम कभी बोले ओके बच्चे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया पापा आपके पापा आपको मारते थे हाँ तो आपके पापा को उनके पापा मारते थे कहते हाँ उनके पापा भी उनको मारते थे कहते हाँ एक बार फिर उसने बच्चे ने पूछ लिया तो फादर ने कहा नहीं मैं ये जानना चाहता हूं तू इतना पूछे जा रहा है कहता क्या है आखिर मतलब क्या कहता मैं ये देखना चाहता हूं ये दादागिरी कब से चल रही है तो वो सोशल आर्किक वैल्यूज तो वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी कब से चल रही है कहां से चल रही सो वो पापा बनिए जो थप्पड़ उठाना बंद कर दे के बस जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट की टेबल पर लिखा हुआ द बक स्टॉप्स हियर यहां जिम्मेवारी यहां ली जाती है खत्म इसके आगे बक नहीं जाएगा द बक स्टॉप्स हियर कई बार हम तो वो एक फ्रेज है ना पास द बक आगे 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 टाल दो आगे टाल दो जैसे कोई ये कहे कि ये पिताजी का काम है पिताजी कहे नहीं तुम्हारी मम्मी ने करना था मम्मी कहे कि फलां ने करना था वो आगे आगे बच्चे को समझ ही नहीं आता कहां से कहां जा रहा है सो द बक स्टॉप्स हियर इट शुड स्टॉप हियर विद अस ऑल ऑफ अस हम अमेरिकन प्रेसिडेंट ना बन सके तो क्या हुआ अपनी टेबल पर तो लिख सकते हैं ना द बक स्टॉप्स हियर कि हम जिम्मेवारी लेंगे हम गलत चीज को आगे नहीं जाने देंगे That should be our approach. So social archaic values भी हैं और lastly, fourthly, सबसे बड़ी चीज जो है that is critical thinking. Critical thinking. सोच विचार मैं कई बार कहता हूं क्लासों में भी अपने कॉलेज में था तो भी don't accept whatever your teacher says. No. Teacher too is a human being, ना जो कुछ मैंने कह दिया या टीचर ने कह दिया उसको वेद वाक्य मान के आपने स्वीकार कर लिया तो ये आपकी कमी है ये आपकी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है डोंट थिंक वही बात आ जाती है कहां गलत हो गए पता ही नहीं कि जी मैंने तो मान लिया ना मेरे टीचर ने कहा था क्यों टीचर कोई भगवान है टीचर भी तो ह्यूमन बीइंग है टीचर भी तो फॉलिबल है लेकिन हमारे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती हमारे कंट्री के अंदर मुझे बहुत अफसोस लगता है इसी पिछले साल अप्रैल में जब अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू हुआ तो लोगों ने पता नहीं कितने हजारों लाखों चल पड़े आई एम अन्ना और लोगों के पास फोन आने लग गए मैसेज आने लग गए कि फॉलो हिम अब मुझे थोड़ा सा बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे ये क्या हो रहा है ये तो मैंने कुछ लिख दिया और गलती से वो अखबार में छप गया और छप ही नहीं गया वो उसको बहुत क्रेडिट किया वो उसको एक अवार्ड विनिंग लेटर मान लिया गया उसे प्राइज भी दिया गया इंडियन एक्सप्रेस ने उस लेटर के लिए 1000 का प्राइज भी दिया तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ मेरे पास कई फोन आप क्या समझते हैं अपने आप को ये क्या है आपने क्या लिख दिया यानी आप नहीं चाहते इस देश से करप्शन खत्म हो हाँ अब मैं बता तो दूंगा पर मैं आपसे लड़ना तो नहीं चाहता ना मैं बताता हूं। सो हुआ क्या, मैंने जो दो चार फोन आए, कुछ मेरे अपने शहर से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक दो दोस्त डॉक्टर्स हैं उनके या कुछ औरों के फोन आए बाहर से भी, एक दो ने पूछा, मैंने कहा बात ठीक है, आप सुनिए तो सही। मैं कहा चलो आप छोड़ो इस बात को मैंने क्या लिखा, आप मुझे ये बता दो अन्ना हजारे क्या चाहता है, आप बता दो। कहते नहीं वी आर फॉलोइंग। मैं कहा नहीं, आप मुझे ये बताओ अन्ना हजारे चाहता क्या है, यू टेल मी, यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं कि उसकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस मेथड से वो चाहता है, कैसे वो इस चीज को दूर करेगा, हैज ही विद हिम ए प्रोग्राम, हैज ही ए पॉलिसी। सिंपल ये कह देना करप्शन हटा दो, हट जाएगी क्या, हो जाएगा क्या। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप तो डॉक्टर हो, पीएचडी हो और आपने रिसर्च की है। मैंने कहा बुरा मत मानना, मुझे दुख होता है कि आपको पीएचडी की डिग्री मिली हुई है, रिसर्च, सर्च के बाद दोबारा सर्च। और उसने कहा और आप भेड़ों की तरह उसके साथ लग गए, आपने वो कैप ओढ़ ली, आया मानना क्या है ये। उसको लगा, कहता है नहीं बात तो आपकी ठीक है। मैं कहा ठीक है तो फिर ये बात कहना सीखो, ये मत कहो। मेरे पास कईयों की मेल आई, कईयों को ईमेल आईडी भी आजकल आसानी से मिल जाता है लोगों का ना, तो वो ईमेल्स आई कई कि आप बिल्कुल नहीं जानते, आप देशद्रोही है, इस तरह के शब्द तक लिख दिए लोगों ने। अच्छा अच्छा किया ना, देखो मुझे ये खुशी हुई, मैंने उनको जवाब दिया थैंक यू, आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट यू रेड माई लेटर, मुझे इस बात की खुशी आपने पढ़ा तो सही। मैंने उनसे ये कहा, देखिए मुझे अन्ना हजारे से कोई नाराजगी नहीं, मैं तो पर्सनली उसको जानता भी नहीं, वो मेरा दुश्मन भी नहीं और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट, बहुत अच्छी बात है ना। उसने जहां भी महाराष्ट्र में जिस एरिया में भी वो है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की भलाई की है, मुझे उसके लिए तो तारीफ करता हूं मैं, लेकिन ही इज नॉट गॉड। बस मैं ये चीज अपने दिमाग में रखता हूं। हां उसके व्यू मेरे व्यू अलग हो सकते ना, डेमोक्रेसी है। उसका ये कह देना कि बाहर बैठ जाओ और कुछ भी, कि यहां हम जो कह रहे हैं पार्लियामेंट उसको पास करे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो तुम हो ना भाई। वो पार्लियामेंट ऐसी खामखा में 60 सालों से जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाए जा रही है, तुम कहां थे पिछले 60 साल भाई, तुम ही कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर सिस्टम को बदलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बदलेंगे ना। आज 6000 लोग खड़े हो जाएं, ये करो वो करो और सारे अपनी अपनी सेना तैयार कर लें तो क्या होगा, एनार्की होगी, कयास होगा या सिस्टम होगा। अरे जो तुमने सिस्टम बनाया है वो तो उसके साथ चलो, और वो सिस्टम अगर काम नहीं करता उस सिस्टम को बदलो। हर चीज की प्रक्रिया है ना, और आज भी तुम वही कर रहे हो। हम आमरण अनशन कर देंगे, हम मर जाएंगे। अरे मर जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, डाइंग जस्ट टू इंस्टिगेट पीपल, दिस इज नो मार्टर्डम, ये शहीद होना नहीं है, दिस इज नॉट। तो कहने का बात, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर कितनी है, कितना हम सोचते हैं और कितनी हिम्मत करते हैं कि हम अपनी बात कह सकें, लेकिन नहीं, हम रहते हैं। मैंने उस लेटर में यह भी लिखा था कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मनमोहन सिंह और एनीबडी, मैं आई एम नॉट फेवरिंग एनीबडी, बट स्टिल कैन वी गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि आपके साथ जो जो हैं वो तो लाइक द क्वीन दे आर अबव बोर्ड, कहते हैं ना द क्वीन इज अबव बोर्ड, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलती करता ही नहीं है क्योंकि राजा का शब्द ही कानून होता है ना। अगर आप एयर ट्रेवल करते हैं और इंडियन सिविल सर्विसेज के आप मेंबर रहे हुए हैं, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप बिल्स को बढ़ा चढ़ाकर किसी भी कारण से पेमेंट ले लेते हैं और उसको गलत नहीं मानते हैं और फिर कहते हैं मैं आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन ना। अरे भाई आपने 20 रुपए देकर 100 रुपए का बिल दिया, 80 रुपए फालतू। अरे 80 रुपए मैंने एनजीओ में लगाया ना, लोगों की भलाई के लिए लगाया। तो मैं एक क्लर्क हूं भाई, और आपने तो 80 रुपए दूसरों की भलाई के लिए किया। अरे मैंने 80 रुपए फालतू लिया ताकि मेरे बच्चे की फीस दी जा सके, क्या गलत किया मैंने? अगर मैंने 100 रुपए की रिश्वत ली अपने बच्चे की फीस देने के लिए तो क्या बुरा है फिर बताओ? फिर कहां आता है? मैंने उससे भी पूछा कि मैडम क्या जब आप स्वयं ऑफिसर थे ऐसे किसी क्लर्क को आप माफ कर देते या उसको सस्पेंड या डिसमिस ना करते? अच्छा तो ये होता आप स्वयं कहते मैंने गलती की है और मुझे पीछे हटना है। अच्छा तो ये था आपके अंदर अगर मॉरल करेज हो और आप आकर ये कहें कि मेरे से गलती हुई, ओके अरेस्ट मी, टेक मी टू द जेल। है हिम्मत? घोटाले कर लेते हो, सब कुछ हो जाता और फिर कहते हो रिमूव द करप्शन, रिमूव द वो, यानी क्योंकि आप बोल रहे हैं इसीलिए कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा, यही बात है क्या? नो, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। अपोजिंग सिर्फ इसीलिए कोई आपके विरुद्ध बोला और आप उसके दुश्मन हो गए, इज इट डेमोक्रेसी? अगर ये डेमोक्रेसी है तो हम सभ्य समाज बन ही नहीं सकते कभी भी। जरूरी है ना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी तो वैल्यूज आएंगी। मत सोचिए कि मेरा बाप कुछ कह रहा है, मत सोचिए मेरा बेटा कुछ कह रहा है, सोचिए ये कि वो क्या कह रहा है और वो कितना ठीक और कितना गलत है। जब ये बात आ जाएगी तब हम डेवलप कर पाएंगे एक अच्छा सोशल सिस्टम। सो ये चार मेजर फैक्टर हैं जो हमें देखने चाहिए अगर हम एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं। अपनी डेली लाइफ के अंदर हम चाहते हैं कि एक सोसाइटी ऐसी हो जहां वैल्यूज की कदर है। मनुष्य का चेहरा देखकर टीका नहीं लगाया जाता है, अक्सर कहते हैं ना मुंह देखकर टीका लगाना, वो नहीं करना है कि आने वाला कौन है, नो, वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या कह रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। So, चलिए वापस आते हैं। पहली बात, बिल्डिंग एथिकल पॉलिसी। अब जैसे हमने कहा, इतना हमने चिल्ला चिल्ला कर बात की और किसी को कंडेम भी किया, किसी को अप्रिशिएट भी किया और अपने आप को हीरो बनाया कि देखो मैंने गलत लोगों के बारे में कहा। अब दो मिनट बैठ के सोचें भी सही ना। Examine your own life, examine the aspects of your own life, अपने अंदर झांक कर देखिए मेरे अंदर कितनी values हैं और कितनी hypocrisy है, कितना आडंबर भरा हुआ है। I think that is more important. Values को भी जानने से पहले अपने अंदर का आडंबर जरूर देखें, hypocrisy देखें। अक्सर जब हम कई बार बात करते हैं हमारे यहां तो ये नहीं होता, हमारे घर में तो ये नहीं होता, मैं तो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करती या नहीं करता, ये जब बातें उठे ना तो एकदम अलर्ट हो जाइए, कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी घूम रही है आसपास, उसको पकड़ें आप। सो एग्जामिन, देखें उसके अंदर कितनी हिपोक्रेसी है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, या जो आप कह रहे हैं वो केवल मात्र दिखावा है। कई बार जो है हमारे अपने करैक्टर डिफेक्ट्स ही ऐसे होते हैं जो वैल्यूज को उठने नहीं देते। अपनी एक एथिकल पॉलिसी लाइफ के प्रति अपनाने ही नहीं देते हमें, हमारे अपने करैक्टर डिफेक्ट्स है। मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है, मेरा इकलौता बेटा है ना, और वो थोड़ा सा हैंडीकैप भी है ना। अब मैं जिस ऑफिस में हूं और बच्चा भी अगर वहीं से अफेक्टेड है तो क्या करूंगा मैं, क्या मैं इंपार्शियल हो पाऊंगा? नहीं ना, उसकी जरूरत है ना। और अगर मैं उसके साथ जो है ठीक नहीं करूंगा या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके उसको बेनिफिट नहीं दूंगा, तो यकीन मानिए हमारे बहुत सारे घर गृहस्थी ऐसे हैं कि जहां शाम को जाने के बाद मुझे रोटी नहीं मिलने वाली है, हो जाता है ना कई बार, क्योंकि मेरे घर पहुंचने से पहले बेटा घर पहुंच जाएगा और जब पहुंचेगा तो रिपोर्ट हो जाएगी और मैं जब घर पहुंचूंगा तो मुझे घर का वातावरण बदला हुआ नजर आएगा। वो है ना, बदले बदले मेरी सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। सो हम वो नहीं चाहेंगे। सो ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स, इनसे ऊपर उठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन वहां हमें टैक्ट चाहिए ना, अपना टैक्टफुल होने का प्रयास हम कर सके ना, कोशिश कर सके, या अपने घर में वातावरण कुछ ऐसा बना सके कि जहां मुझे इस चीज का डर ही ना हो कि मैंने क्या किया और क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। सो ये जो वैल्यूज हमारी करप्ट हो जाती हैं, हम करप्ट कर देते हैं वैल्यूज को, खुद करते हैं करप्ट कई बार एक्सेप्शन में। मैं कोई रोज थोड़ी ऐसे करता हूं ना, किसी गलत आदमी गलत काम के लिए किसी को पूछो भाई क्या बात, नहीं नहीं वो हो गया ना, हो गया ना। बहुत बार तो कहेंगे उसने कहा ना, सॉरी मेरा अगर हाथ इधर गया तो डोंट थिंक कि मैं इधर बहनों की तरफ कह नहीं रहा, मैं एग्जांपल देने वाला था शराब पीने की बात का, अब इधर कैसे एग्जांपल देता मैं इशारा तो उधर ही जाएगा ना। सो देखिए, अब किसी ने शराब पी ली और उसको पूछे, नहीं मैं उसने कहा मैंने एक घूंट पी ली ना, बस वैसे ही हो गया, मैं पीता नहीं हूं, कभी नहीं पीता हूं ना, और उसने बहुत जोर दिया। अब देखो ना, वो मेरा कुलीग है, मेरा ऑफिसर है ना, मेरा बॉस है, अब बताओ उसके दफ्तर में रोज रहना है मेरे को, नौकरी करनी है, अब वो कह रहा है मैं क्या करूं उसकी। और फिर उसकी बर्थडे की पार्टी थी, बताओ मैं ना पीता क्या है, ऑब्लिगेशन आई डोंट नो कि ही ओब्लाइज मी और आई ओब्लाइज हिम, आई डोंट नो, लेकिन इट वॉज समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। बट देन बिलीव मी ये नहीं, मैं जो कह रहा हूं शराब का एग्जाम्पल दिया ऑनेस्टली, और ये आई हैव नेवर टेस्टेड वाइन, मुझे पता भी नहीं क्या टेस्ट क्या होता है, और ये मत कहना जी टेस्ट तो करवा देंगे क्या है, नो सो दैट इज, सो आई मीन द वैल्यूज आर करप्टेड लाइक दिस, स्टार्ट विद एक्सेप्शंस, हो गया अचानक हो गया, और सिगरेट पिलाने वाला दूसरे दिन पूछे कुछ हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ ना, पर आजकल तो देखो लड़कियां भी यूनिवर्सिटी में सिगरेट वगैरह पीती हैं, क्या हो गया, और ये बड़ी लाइट सिगरेट है, इसे कुछ नहीं होता, इसे स्मेल भी नहीं आती, पी के देखो ना, बस दूसरे दिन वैसे फिर पी लिया, तीसरे दिन, चौथे दिन अपनी इंडिपेंडेंट सिगरेट मांग ली, लाओ मुझे भी दो, बस हो गया ना, फिर स्ट्रांग क्या लाइट क्या सब एक जैसा ही है, फिर दैट बिकेम्स। सो देखिए, अक्सर क्या है कि हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमारी वैल्यूज जो हैं, जब हम एथिकल पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं वैल्यूज पर, तो हमारी वैल्यूज जो है दे शुड बी बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, एथिकल पॉलिसी के लिए, दैट इज यानी वो हमारे इनर सेल्फ को डेवलप करें, इनर सेल्फ को, पहले मैं अपने को झांक के देखूं, अपने को देखूं, उसके बाद देखूं कौन क्या कर रहा है। आपने वो कहानी सुनी हुई ना डायमंड नेकलेस की, ये कहानी भी थी और रानी के हार वाली भी बात है कि हार तो पहना हुआ है और दुनिया में ढूंढ रहे हैं उसको, अपने अंदर देखो ना, वैल्यूज भी यहीं पर हैं, गुण भी यहीं पर हैं और बुराई भी यहीं पर है, अच्छाई है तो बुराई भी यहीं पर है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या कहां है। सो इसीलिए हमें अगर वैल्यूज को अपनी अंदर की लाइफ में देखना है, तो फिर उसके साथ साथ खाली अंदर में तो वैल्यूज नहीं रहेंगी ना, फिर उस वैल्यूज को इक्वेट करिए, एडजस्ट करिए, उनको इंटेग्रेट करिए इन अवर डेली लाइफ, इन अवर सोशल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। मेरे अंदर ऑनेस्टी है, मन करता है मैं ऑनेस्ट रहूं, क्या मैं अपने बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ ऑनेस्ट हूं, क्या मैं अपने पड़ोसी के साथ ऑनेस्ट हूं,
क्या मैं अपने स्कूल कॉलेज या ऑफिस जहां मैं काम करता हूं वहां मैं ऑनेस्ट हूं, बिजनेस में ऑनेस्ट हूं मैं, वहां भी ऑनेस्टी है मेरे अंदर। यानी हम इन बातों को उसको इंटेग्रेट करें, ऑनेस्टी ठीक है, सच बोलना ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे अंदर ये क्वालिटी है। एक बिजनेसमैन रोज सवेरे सवेरे जैसे करते भी हैं, दुकान खोलता था अपना, हर दुकान में देखो बड़ा कमाल की बात होती है, आप अगर सोचें इस बात को, हर दुकान में एक छोटा सा मंदिर होता है और उस मंदिर में दुकान खोलते ही वो जो भी दुकानदार है उस मंदिर में पूजा करता है, धूप अगरबत्ती करता है, और तो और जो देवी देवता उसने रखे हुए हैं जिसको वो भगवान मानता है और उनके कपड़े भी सिलवाता है, कपड़े धोता है, बदलता है, सारा कुछ करता है उनके लिए। ऐसे ही एक दुकान पर किसी भाई के साथ मैं बैठा था जैसे, तो कोई आया लेने के लिए, कपड़े की दुकान थी, तो कपड़ा दिया, उसने कहा भाई साहब कुछ कंसेशन कर लें। भाई साहब इसमें एक रुपया मीटर से ज्यादा की कमाई नहीं है, ऐसे ही सके तो बहुत डिमांड में है ना, वो कंपनी देती नहीं हमें ये कपड़ा, ये तो हम जबरदस्ती ले आते हैं, जो भाव देते हैं ले आते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है ना, तो उनकी पूरी करनी पड़ती है, वरना हमें प्रॉफिट नहीं है इसमें, एक रुपया ही मिलता है सारा। चलो उसने फिर कहा कि भाई थोड़ा, अरे भगवान कसम देखो गद्दी पर बैठा हूं, भगवान साथ है वो देख रहा है, झूठ बोलूंगा क्या? बेचारा लेकर चला गया भाई, अब सच ही बोल रहा है। दूसरा आया, उसको उसने जो है वो पहले वाले से भी 5-7 रुपए रेट ज्यादा लगा दिया, उसने वही बात कही, उसके साथ भी वही बात हुई कि जी एक रुपया से ज्यादा तो बचता ही नहीं है, भगवान बैठा है, भगवान कसम ये वो। बेचारा ले गया, अब मुझे लगा क्या हो रहा है ये, वो दूसरा गया, मैंने उसको पूछा, मैं भाई साहब ये क्या कर रहे हो, पहले को आपने 40 रुपए मीटर कपड़ा दिया और उसमें आपका 1 रुपया प्रॉफिट था, आपने भगवान की कसम भी खा ली, और दूसरे को आपने 50 रुपए मीटर कपड़ा दिया और उसमें भी 1 रुपये की बचत बताई और वहां भी आपने भगवान की कसम खा ली, आपको डर नहीं लगता भगवान से? वो कहता है सुनो भाई साहब, सुनो, बेशक आप प्रोफेसर हो, सुनो, कहता है देखो मैं हर रोज आता हूं सवेरे, इसके आगे धूप अगरबत्ती करता हूं, जाने से पहले बंद करता हूं जब दुकान, तब इसको हाथ जोड़ के जाता हूं, फिर हफ्ते में इसके मैं कपड़े बदलता हूं, धोता हूं, कपड़े सिलवाए, इतना कुछ करता हूं, मैं एक झूठ नहीं बोल सकता, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तो ये मेरा एक झूठ माफ नहीं करेगा, फिर इसकी मुझे जरूरत क्या है? तो हमने वैल्यू उसको कहां इंटेग्रेट किया, हम भगत हैं, बुरा नहीं मानना अगर कोई बिजनेस फैमिली से हैं, तो दुकान बंद करने के बाद बिजनेसमैन अक्सर मंदिर होने के बाद घर जाते हैं, मंदिर होकर जाते हैं घर, और मंदिर में भी भगवान को पूरे ढंग से पूजा कराते हैं और दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं फिर उसके लिए। सो ऐसे तो इंटेग्रेट नहीं होती ना वैल्यूज लाइफ के अंदर। सो वैल्यूज को लाइफ के अंदर इंटेग्रेट करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक एथिकल पॉलिसी बने, एंड वी नीड टू डेवलप आवर कैरेक्टर आल्सो। कैरेक्टर मींस रिस्ट्रेंट, पहली बात, सेल्फ कंट्रोल, मैं अपने को कितना नियंत्रित कर सकता हूं, मैं कितना ज्यादा अपने आप पर काबू करता हूं और कितनी मेरी कमिटमेंट टू गुडनेस है, मैं कितना कमिटेड हूं कि नहीं अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, कितना मैं अपनी लाइफ के अंदर वैल्यूज को अप्लाई करता हूं, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज मेरे अंदर कितनी है, और कितना मैं अपने आप को आडंबर से बचाता हूं, हिपोक्रेसी से बचाता हूं, और उसके बावजूद भी इस सारा कुछ करने, आप कहेंगे जी इतना करेंगे तो समाज में रहेंगे कैसे, कोई हमें रहने ही नहीं देगा, कोई हमारे से बोलेगा ही नहीं, ना कोई दोस्त बनेगा, जहां भी जाएंगे वो कहेंगे जाओ 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 अपना घर बैठो जाकर, नहीं वो नहीं, यानी इसके बावजूद भी आई लिव इन द सोसाइटी विद हार्मनी एंड लव, ये होना चाहिए असली कैरेक्टर, तो वो है। कि जब मैं जो है मेरे अंदर एक रेस्ट्रेंट है, यानी लालच नहीं है, कुछ गलत की तरफ बढ़ने की इच्छा नहीं होती है, जहां गलत लगता है मैं अपने आप को रोक लेता हूं, सोचता हूं, विचार करता हूं, फिर फैसला करता हूं कि मुझे उधर जाना है कि नहीं जाना है, वो करना है कि नहीं करना है। ये नहीं कि सारे कर रहे हैं मैं भी चल पड़ूं, वो एडम और ईव की तरह से नहीं, शी गेव मी एंड आई टोक इट, वो नहीं, फॉरबिडन फ्रूट का एप्पल का है ना ध्यान आपको, कि शी गेव मी आई टोक इट, किसी ने कहा मैंने कर दिया, तो वो नहीं, परमात्मा ने मुझे दिमाग भी दिया है सोचने के लिए, मैं एनालाइज भी कर सकता हूं, डिसर्न भी कर सकता हूं, गॉडली पावर है डिसर्नमेंट जो हमें मिली हुई है, कि मैं जो है भेद कर सकता हूं कहां ठीक है कहां गलत है। हम कितनी बार कुछ कह लें, परमात्मा ने हमें इतनी शक्ति दी हुई है कि देखते ही पता लग जाए, इससे बच के रहना भाई, देखते ही पता लग जाता है कि इस व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर रही, क्यों भाई उसने बुरा किया तो, नहीं 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 बुरा तो नहीं किया लेकिन नहीं इच्छा नहीं करती मेरी, क्यों भाई क्या कारण है, वो आपका दुश्मन है, आपका नुकसान किया, आपका ऑफिसर है, आपको पनिश किया, नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल डिसर्नमेंट द पावर, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से, उसके बोलचाल से आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, बिवेयर ऑफ हिम बिवेयर। यानी कई बार होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आपको नजर आ जाता है एंड देन यू आर ऑन योर अलर्ट, संभल के चलना, जैसे कि वो फिसलन वाली जगह आ गई ना, कहीं जा रहे हैं बारिश के उसमें संभल संभल के चलते ना, और फिर दूसरों को भी कहते देखना फिसलन है, बच के आना, गिर नहीं पड़ना, तो दूसरों को भी समझाते हैं उससे बचना भाई, वो ठीक नहीं है। यानी हमें इन चीजों का, यानी जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं अपना, तो इन चीजों का ध्यान रखना है ना, रेस्ट्रेंट भी होना चाहिए हमारे, लेकिन एट द सेम टाइम एक कमिटमेंट टू गुडनेस, मैं कमिटेड हूं कि मुझे अच्छा करना है, तकलीफ सह के भी अगर मैं अच्छा कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए। और देखिए मैंने यहां ये नहीं कहा करना है, करना चाहिए, अब मुझे कहना चाहिए था ना मुझे करना है, कुछ हो जाए तकलीफ सह के भी कुछ हो जाए। वो आना चाहिए, वो फीलिंग्स आनी चाहिए कि थिंग्स हैव टू बी डन इन द राइट मैनर इन द राइट वे फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैक्सिमम पीपल, दैट शुड बी डन नॉट फॉर माय ओन सेल्फ। लेकिन उस सब के बाद अपनी बिवेयर ऑफ हिपोक्रेसी, जैसे हमने कहा कैरेक्टर डिवेलप ही तभी होगा, मेरे अंदर कितने ही गुण हो, पचासों गुण हो, जो भी वैल्यूज यहां हम टीचर लोग जो है बताते हैं करते हैं और आपको सचमुच लगे वो सारी वैल्यूज हैं, तो वो सारी वैल्यूज न्यूट्रलाइज हो जाएंगी अगर आपके अंदर जरा सी भी हिपोक्रेसी है, तो सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी हिपोक्रेसी अगर है तो, क्योंकि उसी हिपोक्रेसी के कारण ही तो आप कहेंगे हां मेरे अंदर ये वैल्यू भी है ये वैल्यू भी है ये वैल्यू भी है। ओके, देन नेक्स्ट इन द एथिकल पॉलिसी इज रोल मॉडल एंड लीडरशिप। मैं अक्सर ना कॉलेज में भी था तो मुझे माइक तो हम वहां यूज नहीं करते, आवाज ही परमात्मा ने इतनी ऊंची दी है, बल्कि कई लोग कहते हैं सर आप धीमे नहीं बोल सकते, अब हम सुन रहे हैं ना आपको आवाज आ रही है फिर भी आप इतना ऊंचा 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 बोले जा रहे हैं, मैं कोई बहरा हूं क्या? लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि आप बहरे भी नहीं हैं और मेरी आवाज भी ऊंची है और मेरी आवाज मेलोडियस भी नहीं है, किसी लोरी की तरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी कईयों को नींद आ जाती है। हाँ जी, पता नहीं, मैं तो बल्कि ये कहा करता हूं कि अगर कोई सो भी रहा हो तो मैं उसको जगा देता हूं, लेकिन कोई जाग रहा हो तो सो जाए, चले कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ना। वैसे क्लास में सोने का सौभाग्य किसी किसी को मिलता है, यकीन मान आप में से बताओ कितने हैं जो कह सकते हैं कि जी मुझे क्लास में सोने का सौभाग्य है, करेंगे हाथ खड़ा करा, कोई करेगा? ओ अरे बहनों में भी हैं सोने वाले, ओ यानी यहां नहीं, यहां नहीं, यहां की बात नहीं कर रहा मैं। हमारी क्लास तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी हंसी मजाक में जाग गए ना, सोए हुए भी जाग गए, अब तो ठीक हो गया। चलें वापस आएं, वापस आएं। देखिए जब हम एथिकल पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें ध्यान रखनी है वो है, मैं एक रोल मॉडल बनूं। रोल मॉडल यानी जो बात मैं कहना चाहता हूं पहले वो मैं खुद करूं, क्योंकि लोग मुझे देखकर करेंगे ना। सो वो रोल मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी मेरे अंदर होनी चाहिए, और तभी मेरे अंदर रोल मॉडल होने के साथ साथ, मैं तो उसकी इसको कोरोलरी कहूंगा, उसका एक बाई प्रोडक्ट ही कहूंगा, कि अपने आप एक लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। व्हेन यू आर रोल मॉडल पीपल विल फॉलो यू, एंड व्हेन पीपल फॉलो यू यू बिकम ए लीडर, नॉट पॉलिटिकल लीडर ऑफ कोर्स। सो दैट इज, सो एक रोल मॉडल डेवलप करने की अपने आप में होना चाहिए। पहले तो हम मानते थे हमारे जो किंग्स होते थे ना, रिलीजियस लीडर्स हैं, या इवन टीचर को, टीचर को आज भी मानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमी हमारे में आ गई। बच्चे तो, लोग तो आज भी टीचर को मानते हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया टीचर की वो इज्जत नहीं रही। नहीं, गलत बात है, मत कहिए ये बात। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि अब तो जी समाज में टीचर की वो इज्जत नहीं है, नहीं, टीचर की इज्जत आज भी है और उतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन जिनकी इज्जत नहीं होती वो टीचर होते ही नहीं है ना, वो टीचर का चोगा पहने हुए होते हैं। अब अगर आप कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम के अंदर से निकलकर और आप अपना एकेडमी चलाएंगे और कहें मैं टीचर हूं, टीचर कहां है, बिजनेसमैन है ना आप तो, यू आर नॉट ए टीचर। सो वाई शुड सोसाइटी रिस्पेक्ट ए बिजनेसमैन? बिजनेसमैन तो प्रॉफिट लॉस की बात करता है हमेशा, टीचर पढ़ाने की बात करता है। बताओ आप क्या कर रहे हो? अगर आप पढ़ा रहे हो तो समाज आपकी इज्जत करेगा, और अगर आप अपना बिजनेस देख रहे हो तो समाज क्यों करे? आप किस हक से मांगते हो? आप वो इज्जत मांगने का हक ही कहां है आपको? नो। सो इसीलिए ये ना कहिए कि टीचर की या उसकी इज्जत नहीं होती है, है, पूरी इज्जत है। सो पहले टाइम में हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन आज थोड़ी एक और, कुछ और लोग भी आगे आ गए हैं जिनकी अब बहुत ज्यादा इज्जत होने लग गई, या वो रोल मॉडल बनने लग गए हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, फिल्म स्टार है ना हमारे, शाहरुख खान है, या अमिताभ बच्चन है, या बहनों में कौन कौन है, सलमान खान आइकन लोगों के, ओके हाँ, मुझे पता भी नहीं है, सच बात है। मुझे तो आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि पिछले 30-35 साल में मैंने कभी कोई फिल्म देखी होगी, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि टीवी में सीरियल कौन से आते हैं। आई एम वेरी डल टाइप ऑफ ए पर्सन, मैं बड़ा नीरस किस्म का आदमी हूं, कभी मेरे साथ दोस्ती मत करना, क्योंकि मैं कोई सीरियल नहीं देखता टीवी का कभी भी। घर में दो दो टीवी, केबल कनेक्शन सब कुछ है, लेकिन 6-6 महीने तक मैं टीवी कभी ऑन ही नहीं करता हूं। पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, मुझे तो नहीं पता, बट स्टिल आई डोंट डू इट। सो मुझे जरूरत नहीं लगती, मुझे टाइम भी नहीं मिलता। लोगों के पास जो है वो सीरियल का ही टाइम होता है, किसी के फोन कर लो भाई साहब घर में हैं, आप आ जाओ, पर इस वक्त मेरा सीरियल का टाइम है। वो बहनें कई बार जो हैं वो फटाफट किचन में खाना बनाएंगी, अपना थाली में डालेंगी और टीवी के आगे जाके बैठ जाएंगी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, सीरियल का टाइम है ना मेरा वो सी। और फिर कई बार डिस्कशंस क्या होंगे, वो राम श्याम वो सीरियल का जो भी कैरेक्टर है, क्या हुआ उसका आगे, उसका डिवोर्स हो गया, वो आजकल क्या कर रही, यानी डिस्कशन, ये कैरेक्टर्स, माय गॉड, ये रोल मॉडल बन गए हमारे, और हम इन्हीं इन्हीं को जी रहे हैं अपनी जिंदगी में। ऑनेस्टली मैं आई रिकमेंड, अगर आप में से कोई टीवी देखते हैं और ये सीरियल्स देखते हैं, प्लीज फॉर गॉड्स सेक स्टॉप व्यूइंग इट, देखना बंद करिए। कारण ये हमारे अंदर बहुत गलत संस्कार पैदा कर रहे हैं।
अगर कोई करेक्टर फेमिनिन करेक्टर दावे के साथ उस सीरियल के अंदर एबीसी किसी भी सीरियल के अंदर ये कहे कि मैं देखती हूं तेरा हस्बैंड तेरे साथ कितने दिन रहता है, मैं उसे तोड़ के दिखाऊंगी, मैं उसे अपना बना के दिखाऊंगा, ओ बाबा माय गॉड। सो ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग एंड व्हेन इट हैपन्स इन द सीरियल्स इट इज बाउंड टू हैपन इन लाइफ, बिलीव मी। जो चीज सीरियल्स में हो रही है आज हो रही है, आज आप एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कल वही चीज आपके जीवन में होने वाली है। इसीलिए अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो उसे मत देखिए, बंद करिए उसे। बहुत पहले जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, नाउ माय सन इज अबाउट 40 इयर्स, तो व्हेन ही वाज अबाउट 12-15 समथिंग लाइक दैट, तब तो बहुत थोड़े चैनल्स थे, तो एक सीरियल आया करता था हम पांच, मुझे याद है, वो पांच लड़कियों की कहानी कह लें कुछ कह लें, और वो अपने पेरेंट्स के बारे में उसके बारे में। मैंने एक दिन देखा ये क्या कह रहे हैं, और वो फादर के प्रति भी इस टोन में बोल रहे थे, इस ढंग से बोल रहे थे, अरे बाप तू क्या समझता है फादर को। मैंने उस दिन बच्चों को कहा कि बच्चे इस घर के अंदर ये सीरियल नहीं चलेगा, चाहे मेरी डिक्टेटरशिप मान लो कुछ मान लो। तो पहले तो बच्चों ने जैसे प्रोटेस्ट हो, पापा ये भी कोई बात, मैं ना ये नहीं चले, आई डोंट वॉन्ट कि कल को तुम मुझे उस तरह से बुलाओ। मैंने कहा तुम्हारी मां तो तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि वो बच्चे जो है मां को बड़े ढंग से बोलते हैं, अच्छा सा बोलते हैं, सो वो शायद तुम्हें कहे ठीक है देखो, लेकिन मैं नहीं देखने। और वो दिन गया और उसके बाद मेरे बच्चों ने वो कभी चलाया भी नहीं, वो नहीं चला सीरियल कभी घर में। सो जरूरी है अगर आप चाहते हैं एक वैल्यू बेस्ड लाइफ हो तो रोल मॉडल भी बनिए उसके लिए, वो करना जरूरी है। सो इसीलिए आज के टाइम में जैसे फिल्म स्टार हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं और वो रोल मॉडल हैं, लेकिन उनका मैसेज क्या है, आप देखें क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। टीचर पहले रोल मॉडल थे। आई होप यू एक्सक्यूज मी टेकिंग वाटर इन बिटवीन। हम बात कर रहे थे कि रोल मॉडल यानी वो हमारे किस बात के रोल मॉडल हैं, ये जो फिल्म स्टार हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं या दूसरे किस बात के। शाहरुख खान अपनी एक पिक्चर के 5 करोड़ लेता है, मैं भी अच्छा एक्टर बनूंगा। स्पोर्ट्स पर्सन तेंदुलकर को देखो, कितनी जो है वो कंपनीज ने अपना वो रोल मॉडल ब्रांड बना रखा है, ब्रांड एम्बेसडर। तो मैं भी अगर एक भी मेरे को इंडियन क्रिकेट मैच खेलने को मिल जाए तो आई विल बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैनी कंपनीज, और फिर करोड़ों करोड़ों आएंगे। कहीं किसी ने ये कहा कि तेंदुलकर के अंदर या शाहरुख के अंदर या फलां के अंदर वो क्वालिटीज हैं, मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज आनी चाहिए, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है, दैट इज व्हाई ही इज माय रोल मॉडल। सो फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस हम आजकल उनको रोल मॉडल बना रहे हैं अपना। तो हमें अपना जो है स्वयं को भी एक रोल मॉडल के रूप में तैयार करना है, और उसके लिए जरूरी है कि मेरे अंदर एक ग्रेट मॉरल पावर हो, मॉरल पावर हो। हम रोज पता नहीं कितनी बार बाबा के भजन, बाबा के गीत सुनते हैं, कभी मन में आया बाबा को अपना रोल मॉडल बनाना है ना मुझे। कोई भी काम करने से पहले मैं ये सोचूं, अगर बाबा ब्रह्मा बाबा इस स्थिति में होते तो क्या करते, ब्रह्मा बाबा यहां होते यहां पढ़ा रहे होते तो क्या ऐसे ही पढ़ाते जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं, हा? बहुत बेहतर पढ़ाते ना, और वो ऐसे पढ़ते जैसे मैं पढ़ रहा हूं, शायद वो भी नहीं, हा? कम से कम वो क्लास में सोते भी ना, कम से कम क्लास में नोट्स लेते, उनकी कॉपी खुली रहती, पेन खुला रहता। अब मेरा तो ना पेन खुला है ना कॉपी खुली है ना कुछ भी कैसा भी है ना। सो तो रोल मॉडल ऐसा बनाए और स्वयं को अपने रोल मॉडल के तौर पर तैयार करें ना। मेरे अंदर
प्योरिटी हो, नोबिलिटी हो, मॉरल पावर हो, स्पिरिचुअलिटी, मेरे अंदर वो गुण हो ना, तभी तो मैं रोल मॉडल बन पाऊंगा। महात्मा गांधी को लोग आज भी फॉलो करने को तैयार हैं, अन्ना हजारे आज भी अपने आप को ये कहने को तैयार, इस बात को शायद उसके ड्रीम है कि उसको लोग महात्मा गांधी मान लेना किसी तरह से, उसके मन में आज भी यही एक सपना है, काश लोग उसे महात्मा गांधी मानते, जैसे हम टीचर्स के मन में कई बार आ जाता है कि काश हम भी जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन की तरह होते ना, हमें भी एक अच्छा टीचर माना जाता, देश के अंदर टीचर्स डे भी कभी शायद हमारे नाम से मनाया जाता। तो वो रोल मॉडल बनिए ना उस तरह से, वो पावर लाइए अपने अंदर, अपने अंदर गुण पैदा करिए, तब हम अपनी एक अच्छी एथिकल पॉलिसी बना पाएंगे। फिर आइए सोशल जस्टिस की तरफ। सोशल जस्टिस है समाज में, हम कहेंगे सर मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूं, पहले बहन जी ने कहा आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो मुझे अब डर लग रहा है, नेगेटिव बोलूंगा तो गड़बड़, और नेगेटिव नहीं बोलूंगा तो आप कहेंगे सर टॉपिक नहीं कराया आपने पूरा। बोलूं बहन जी, इजाजत है ना? क्योंकि उसके बिना टॉपिक नहीं चलेगा ना आगे, नेगेटिव तो बोलना पड़ेगा। टीचर को कई रोल करने पड़ते हैं ना, कभी वो मदर बन जाती है, कभी फादर बन जाती, कितना अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मां का भी रोल करता है, फादर का भी करता है, कभी बच्चा बन जाता है, कभी भिखारी भी बन जाता है, कितना क्या बढ़िया है। परमात्मा के बाद टीचर, इसीलिए तो बाबा ने अपने रोल में तीन लिए ना, और टीचर और प्रिसेप्टर वो एक ही है, मैं तो उसको गुरु और सतगुरु एक ही है ना, तो बाप के बाद कौन है? टीचर ही है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाप, पढ़ा सुना है ना आप लोगों ने, सो बलिहारी गुरु आपके गोविंदियो मिला है। देखिए तो मुझे तो घमंड होना चाहिए ना कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, खबरदार कोई गया तो अंदर भगवान बैठा है तो मैं ही मिला सकता हूं ना आपको भगवान से, दरवाजा खोलूंगा तो जाने दूंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। दिस इज पॉजिटिविटी, बट दिस वॉज ए नेगेटिविटी ना, आपने इसको पॉजिटिविटी कैसे मान लिया? मैं तो दरवाजा रोक के खड़ा हूं ना, नहीं जाने दूंगा, जब मैं चाहूंगा तब जाओगे आप। चलिए, सो आई मीन सोशल जस्टिस के लिए अगर आप देखेंगे समाज के अंदर क्रुएलिटी है, एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत ज्यादा इनजस्टिस है, और आजकल जो लिटरेचर आ रहा है, चाहे वो मीडिया की फॉर्म में आ रहा है, प्रिंटेड मीडिया की फॉर्म में आ रहा है, बुक्स की फॉर्म में, मैगजीन्स की फॉर्म में, अखबारों की फॉर्म में, फिल्म्स की फॉर्म में, ये सारी चीजें हाईलाइट हो रही हैं उसमें। अखबार उठा के देख लीजिए ना, क्या न्यूज मिलता है रोज, उधर उसको जला दिया, उसको मार दिया, वहां रेप हो गया, वहां मर्डर हो गया, ये यही आ रहा है, और क्या आ रहा है? शीयर एक्सप्लॉयटेशन, शीयर क्रुएलिटी, sheer loss of values, that is being depicted. So हमें social justice का एक system तैयार करने के लिए भी कुछ अपने अंदर गुण पैदा करने होंगे और आसपास भी करना होगा। उसके लिए सबसे पहले जैसे हम कहें कि एक ideal of equality हो, equality, and then equality not platonic, काल्पनिक नहीं, बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ conditions ऑफ द सोसाइटी। मेरे समाज के अंदर क्या है, वास्तव में क्या हो रहा है, और किस तरह से मैं इस समाज के अंदर इक्वालिटी पैदा कर सकता हूं, किस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकता हूं अपने आसपास, अपने परिवार में। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, और यहां जवाब आप दीजिए अपने आप को, आपके घर में आपका बच्चा प्रोफेशनली पढ़ गया, आपके शहर में उसके लिए जॉब नहीं है, आप बूढ़े हो गए मेरे से भी ज्यादा, आप चाहते हैं आपका इकलौता बेटा है आपके साथ रहे, शहर छोड़कर आप जा नहीं सकते, जिस मेट्रोपॉलिटन में वो जॉब लेता है वहां उसके पास अकोमोडेशन नहीं है कि वो आपको रख सके, अब क्या करेंगे आप? जाने देंगे? जाओ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जाओ, तुम्हारा अपनी तरक्की इसी में है। लेकिन उसके बाद आता है, हाँ तरक्की तो इसमें है, समाज क्या कहेगा, अरे बूढ़े माँ बाप को छोड़ गया, बेचारे बेचारे, बस वो शब्द बेचारे आ जाता है उनके लिए। मुझे कई कई बार, एक बार मुझे यही सुनना पड़ा, बेचारे अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, मैं यहां आता हूं महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, यानी साल में 7-8 महीने मैं यहां रहता हूं, और 10-10 5-5 दिन के स्पेल में घर लगा के आता हूं, और मेरी एब्सेंस में घर में दो मेंबर हैं, माय ओल्ड वाइफ, ओल्ड का मतलब बूढ़े से नहीं, माय ओल्ड वाइफ मींस द वाइफ ऑफ 40 इयर्स, सो इसीलिए ओल्ड, हम पिछले 40 साल से इकट्ठे हैं, सो दैट इज वाई आई सेड ओल्ड वाइफ, माय वाइफ एंड माय मदर। या सो देखिए, तो पड़ोस में कहने वाले क्या कहते हैं, लो देखो तो बड़ा आध्यात्मिक बनता है, हा? चला गया माउंट आबू, दो बूढ़ियों को घर छोड़ गया। माय मदर ऑफ कोर्स शी इज 87 इयर्स, सो कि छोड़ गया। अब देखिए, अब ऐसी बातें, अब क्या करें, सोशल जस्टिस है, यहां सोचना पड़ेगा, यहां आप जवाब दें, सोशल जस्टिस फिर भी तैयार करना है, बेशक ये अच्छा लगे लेकिन सोशली तो अनएक्सेप्टेबल है ना। आप कहें कितना ही कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं, नो द सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट इट, सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट इट। और शायद इसी सोशल डर से आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैं पिछले महीने दिसंबर में, नवंबर में भी मैं गया घर, यहां से 21 तारीख की रात को ट्रेन पे बैठा, 22 दोपहर बाद दोपहर के 3-4 बजे घर पहुंचा, 23 का दिन रुका, 24 तारीख की सुबह 4:30 बजे ट्रेन में बैठा और 25 को यहां पहुंच गया। कहने को हो गया, मैं घर हो आया ना, लोगों को दिखाई दे, हाँ नहीं आया हुआ है, यही है। एक दिन फिर मैं इस दिसंबर में 27 को गया, यहां से 2 को वापस आ गया, 2 तारीख को पिछले हफ्ते मिलाया बहुत लोगों को, जब 1-2 दिन के लिए जाता हूं जितना पॉसिबल हो सबको मिलता हूं, सबको, ताकि उनको दिखाई दे जाए, हाँ हाजिरी लग जाए मेरी। क्योंकि मुश्किल ये है कि ये सर्दी के दिन है, इन दिनों में लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, दिखते भी नहीं है वो, ताकि दिखे तो उनको हेलो करें, सर कैसे हैं, कैसे है? और वो पूछते हैं कब आए, आए ना कई दिन हो, आए हुए हैं ना कई दिनों से, यही है, ये नहीं पता कि कल आए थे और कल जा रहे हैं। आई मीन सर्टन थिंग्स आर सोशली अनएक्सेप्टेबल। आप कितना भी आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, कितनी आपकी एथिकल ग्रोथ हो, मॉरल ग्रोथ, वट एवर, लेकिन क्या आप अपने समाज को इग्नोर कर सकते हैं? आर यू दैट पावरफुल? नो वन इज। कह लिया आपने, नो आई रिजर्व माई कमेंट्स, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मुझे बदहजमी नहीं होती, डोंट वरी। रहने दो अंदर, कुछ अंदर भी रहने दो, अंदर भी रहने दो, नहीं गलत कोई भी नहीं है, वो भी नहीं गलत है, मैं भी गलत नहीं हूं, आपस में कर लेना बात आप दोनों। आपकी बात का जवाब वो दे रही है, बाद में आपस में डिस्कस कर लेना है, चलें आगे चलते हैं। सो देखिए, फिर समाज के अंदर देखिए फैक्टर्स आते हैं, कई, कहीं क्लास फैक्टर है, कहीं कास्ट फैक्टर है। अब आप सोशल जस्टिस की बात भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक इंक्लूसिव सोसाइटी हो जहां जन्म से जात से भेदभाव ना हो, एक एम्पावरमेंट हो आप चाहते हैं। जब आप क्लास की बात करते हैं, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, नोट करें, जब हम क्लास की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, तब हम क्लास क्लास یعنی وہ مڈل کلاس سے ہے، وہ اپر کلاس سے ہے، وہ لوور کلاس سے ہے، وہاں ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں، سٹینڈرڈ آف لائف کی بات کر رہے ہیں. اور جب ہم جو ہے کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سمے ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جنم کی بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس کو کیا جو ہے لیول دیا گیا ہے. سو یہ چیزیں ہمارے سوشل جسٹس کے لیے دقت پیدا کرتی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے ان کے اندر ایکوالٹی لا سکے. اور پھر سب سے بڑا ایشو جو آج کا بنا دیا گیا ہے، میں نہیں کہتا بنا ہوا ہے، کل ڈائننگ ہال میں بیٹھا ایک امریکن بیٹھے تھے، وہ بھی اسی ایشو پر بات کر رہے تھے، اور ہی واز ایمفیسائزنگ کہ انڈیا از دا ورسٹ کنٹری، اس سے زیادہ کرپٹ شاید وہ اور کوئی ہے نہیں. اور سننے والے ہماری کلاس میں سے تھے کوئی کل جو ایک امریکن کے ساتھ بات کر رہے تھے؟ بائی چانس میں اسی ٹیبل پر بیٹھا تھا، میں سنتا رہا، پھر اور سنتا رہا، الٹیمیٹلی برسٹ آؤٹ. بس وہ آپ غبارے کو کتنا دبائیں گے پانی میں، کتنا دبائیں گے، الٹیمیٹلی تو وہ چھوڑیں گے تو اٹھے گا نا ایک دم سے. پھر میں نے اس بھائی کو پوچھا، میں کہا سر ایکسکیوز می، یو آر فرام امریکہ؟ یا ڈو یو تھنک دیر از نو کرپشن ان امریکہ؟ ڈو یو نو دا ڈفرنس، دا کاسٹ ڈفرنس ان امریکہ؟ آپ کو اتنی نالج ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا. اوکے، تو سبجیکٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل سائنس. تو میں نے پوچھا آپ نے انڈین کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ امریکن کانسٹیٹیوشن آدھے گھنٹے کا کانسٹیٹیوشن ہے سارا. انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ تین دن لگے رہیں گے تو آپ کو پڑھا ہی نہیں جائے گا، دیر از اے لاٹ آف ویریشن، یو نو. اینڈ ہیو یو ریڈ اباؤٹ نکسن؟ میں نے ان کو پوچھا، میں کہا ہیو یو ریڈ ٹونی موریسن؟ تب ان کو لگا غلط پھنس گیا میں، تو غلط ہو گیا. میں نے کہا ڈونٹ سے دیٹ انڈیا از اے کرپٹ کنٹری. انڈیا از ناٹ اے کرپٹ کنٹری، دو آئی ایکسپٹ دیر از کرپشن ان انڈیا، دیر از ڈفرنس بٹوین دا ٹو تھنگس، ان دو باتوں میں انتر ہے. اینڈ آئی آلسو ناٹ سے دیٹ امیرکا از اے کرپٹ کنٹری، but still I can say there is lot of corruption in America. Am I right? وہ نہیں، آپ یس نہ کریے، اس نے یس کری. He said نہیں وہ تو that is everywhere. But then when it is everywhere, why are you condemning India? How many times have you come to India? He says it's my first time. So جمعہ سات دن ہوئے نہیں آپ کو بھارت میں آئے ہوئے، اور آپ بھارت کی پولیٹیکل سسٹم پر اپنا کمنٹ دے رہے ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھا نہیں، آپ کو پتا بھی نہیں، اس کے بعد آپ انڈین پالیٹکس کے اوپر کمنٹ دیں. دیٹ از واٹ وی ڈو ویری آفن، بنا جانے بنا. ہم بھی کرتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں. جو برہما کماریز میں پہلی بار آئے ہوں گے وہ گھر جا کر دیکھو کیا کیا بولیں گے برہما کماریز کے بارے میں، یعنی کچھ پتا بھی ہو نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا برائی کریں گے، تعریف کریں گے، لیکن تعریف بھی کیسی، ہاں وہ پھر وہ اوور ڈوئنگ ہو جاتی ہے نا کئی بار، لوگوں کو لگنے لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو دیکھیے، سو کرپشن ہے. پھر سب سے بڑی بات جو ہمیں چاہیے اگر ہم سوشل جسٹس چاہتے ہیں نا، ٹیچرز ایجوکیشن چاہیے، ٹیچرز ایجوکیشن، کہ ہم اچھے ٹیچرز تیار کر سکیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی جو ہے ٹیچنگ اسائنمنٹس دے دی ہم نے، میرے جیسا کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے پڑھانے کے لیے، لو جی ہم ٹیچر بن گئے. نو، دس از ناٹ، یعنی پراپر ٹیچر ٹریننگ ہو، ایجوکیشن کی ویلیوز تب آئے گی. ایجوکیشن کی ویلیو، میں نے یہ نہیں کہا ویلیوز ان ایجوکیشن، ایجوکیشن کی ویلیو تب ہوگی جب ٹیچرز ہیں، اور جب اچھے ٹیچرز ہوں گے تب ایجوکیشن میں ویلیوز آئیں گی. ضروری ہے، اور ٹیچر بھی چاہیے رول ماڈل ہو. یہ نہیں کہ ہماری میم کیسے کپڑے پہن کر آتی ہے، ہمارے سر کون سے سوٹ ٹائی لگا کر آتے ہیں، وہ نہیں. رول ماڈل ہمارے ٹیچر کیسے جو ہے کوالٹیز ہیں ان کے اندر، हमारी मैम जो है वो कितनी इंटेलिजेंट है, वो कितना एक्स्ट्रा रीडिंग करती है, कितना पढ़ती है, कितना उसको नॉलेज. वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स एंड देन फॉलो दोज टीचर्स. सो टीचर्स चाहिए हमें. और फिर सोशल जस्टिस में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है मीडिया. अनफॉर्चुनेटली बिलीव मी, अगर कोई मीडिया के बैठे हैं तो चाहे वो बुरा भी माने, सुने जरूर जो मैं कह रहा हूं कि जितना मीडिया, जिसको हमने फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी कहा, वो मीडिया इतना ज्यादा अब नीचे गिर रहा है कि बहुत अफसोस लगता है. कि अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर किसी को हाईलाइट करने के लिए किसी करेक्टर, यानी एक तो बीमारी ये हो गई कि 24 घंटे चलने लग गए ये सारे चैनल, अब मैटर है नहीं इनके पास, कहां से लाएंगे. तो आपने एक घंटा खरीद लिया, एक घंटे में आज आप शाहरुख खां पर दीजिए सारा का सारा एक एपिसोड बनाइए, आज आप उस पर बनाइए. तो इन चीजों को दिखाया जा रहा है, दिस इज व्हाट मीडिया इज डूइंग. और मीडिया के अंदर न्यूज कैसी आती हैं वो भी हम जानते हैं, बॉट परचेज्ड. अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन कह देता है मेरे बारे में गलत खबर नहीं आनी चाहिए तुम्हारे चैनल पर, अच्छा जी नहीं आएगी, मतलब क्या है. सो मीडिया का रोल बहुत अच्छा है, अगर ये चाहे तो इट कैन इंटेग्रेट वैल्यूज इन सोसाइटी, लेकिन इफ इट डजंट डू इट एंड इफ इट इज बेस्ड इन कंज्यूमरिज्म देन इट प्लेज हैवक विद द सोसाइटी. समाज को बना भी सकता है और समाज का सत्यानाश भी कर सकता है. सो ये हमने देखना है कि मीडिया क्या कर रहा है. दैट इज व्हाट सोशल जस्टिस वुड बी. अब सोशल आर्केक सोशल वैल्यूज की बात करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर पुरानी वैल्यूज आज भी वही सिर उठाती. मैंने थोड़ी देर पहले कास्ट का एग्जाम्पल दिया था, कास्टिज्म, यानी इतना ज्यादा हमने उसको ले लिया, चाहे हम अपने आप को कितना पढ़ा लिखा कह लें, हम इस बात से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं. कितने अपर कास्ट के लोग हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट को या बैकवर्ड क्लास को या ट्राइबल्स को या ओबीसी को अपना दोस्त बनाएंगे और अपने घर के अंदर ले जाएंगे और इकट्ठे बैठकर खाएंगे पिएंगे, कितने लोग हैं. आज भी हम कहे नहीं 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 ये बैकवर्ड क्लास है ये शेड्यूल्ड. अरे क्या हो गया ना, मैं तो नहीं मानता उसको. आप मुझे बार बार, मुझे पता है इंस्टिगेट करते हैं आप मुझे. आपको इनको ये पता लग गया कि सर की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, सो इसीलिए ये उछालते हैं. हैं सो नहीं, वो पता क्या होता है, एक अथॉरिटी हो जाता है. कल को मेरी जिम्मेवारी नहीं, मैं क्या करूं, टीचर ने कहा था ना, आप पूछ लो मिस्टर गुलियानी ने कहा था ये क्लास में, और ना कहा हो तो मैं उनकी रिकॉर्डेड सीडी सुना देता हूं आपको. तो नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल लीडर्स रोल मॉडल नहीं है, ये अपनी कुर्सी के पीछे हैं. नो, गलत है ना, वो गलत है, छोड़िए उसको, वो आरके वो वैल्यूज में नहीं आता है. कुर्सी के पीछे दौड़ना वो वैल्यू नहीं है, है? इसीलिए तो हमने कहा कुर्सी खाली मत छोड़िए, दे दीजिए किसी को भी कुर्सी, दे दीजिए, खाली नहीं रखनी कोई भी. सो देखिए हमारे वैल्यूज में कास्टिज्म तो है ही सही, और देखिए पॉलीगेमी, यानी आई मीन क्या कहें, बहुविवाह, यानी बहुविवाह भी क्या है कि बहुत बुरा लगता है. पुरुष करे तो ठीक, स्त्री करे तो गलत. और हम भूल जाते हैं कि जब पुरुष करता है तो उस एपिसोड में भी एक स्त्री इन्वॉल्व होती है. पॉलीगेमी यानी बहुत गलत है कि आप मैरिटल इंस्टीट्यूशन में होते हुए भी हम इस बात को समाज में बुरा नहीं मानते कि एक मैरिड व्यक्ति ने आउट ऑफ द मैरिज इंस्टीट्यूशन कोई गलत काम किया, किसी स्त्री के साथ संबंध रखे. और अगर कोई स्त्री जो है किसी पुरुष के साथ संबंध रखती है तो वो गलत है. तो जब पुरुष मैरिज के बाहर किसी स्त्री से संबंध रखता है तो वो भी तो स्त्री और पुरुष का मामला है ना, और जब स्त्री संबंध रखती है किसी पुरुष से तो वो भी तो स्त्री पुरुष का मामला है, फिर अलग कैसे हो गया? मुझे तो ये आज तक समझ ही नहीं आया, अलग कैसे? उसमें भी पुरुष स्त्री इन्वॉल्व है, उसमें भी स्त्री पुरुष इन्वॉल्व है, लेकिन वो पॉलीगेमी नहीं, पुरुष तो कर सकता है ना, दैट इज वेरी बैड। यानी ये चीज जो है, और इस बात के लिए हम दोपहर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कहूं कि आज दोपहर बाद भी मैं मिलने वाला हूं आपसे? अच्छा, मैं आपको दोपहर बाद भी मिलने वाला हूं आज, और एक क्लास और भी लूंगा, क्योंकि आप यू लाइक मी, आपने खुद ही कहा था कि आप पढ़ाओ, बेशक पढ़ाओ। तो आज अगर आप बोर होते हैं तो होते रहिए, फिर मैं डेढ़ घंटा और आपसे बात करूंगा। डर गए कई, अरे डरो नहीं, डरो नहीं, रिलैक्स 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 रिलैक्स। और बहनें खास तौर पर डरी, आप चिंता नहीं, मैं बहनों के बारे में बोलूंगा अगले पीरियड में, आपके साथ चलूंगा, आपकी फेवर में बोलूंगा, फिर तो ठीक है ना, आई थिंक फिर तो आप मुझे साथ ले लेंगे ना, अलाउ करेंगे। ओके, या आई हैव ए क्लास इन द आफ्टरनून, डॉक्टर ममता उनकी क्लास मुझे फिर लेनी है। चलें, तो देखिए हमारे अंदर जो पुरानी आर्किक वैल्यूज है ना, उनको आज भी हम पकड़े हुए हैं, दकियानोसी का जीवन जी रहे हैं, पॉलीगेमी है या इवन अथॉरिटेरियनिज्म है। और आप कहेंगे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं आज भी है वाइफ बैशिंग। ये जो ये हमारे मेरे दाईं तरफ बैठे हैं ना, ये पता, ये तो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन जैसे ही कई लोग हैं जो पत्नी पर हाथ उठाने में शर्म नहीं करते, झिझक नहीं करते। आई होप नन ऑफ यू डज इट, नहीं करते ही नहीं ना, बहुत अच्छे हैं। मैं भी नहीं करता ना कभी, मैंने भी नहीं किया। हाँ, अच्छी बात है ना, कई बार ये भी होता है मैंने हाथ उठाया नहीं क्योंकि पत्नी ने उठाने नहीं दिया। सो नहीं, वो वाइफ बैशिंग आज भी है। तो इन चीजों को जो है हमें इन आर्किक वैल्यूज से ऊपर उठना है। फिर फिलंथ्रोफी, परोपकारिता, हम बहुत दानी हैं भारतीय लोग, बहुत दानी, लेकिन दान करते क्या हैं? यानी इन ए सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आप कभी किसी मंदिर में गए हों, किसी तीर्थ स्थान पर गए हों कहीं, तो जैसे ये पंखा है ना, आप पंखे की पंखुड़ियों पर देखें, ये पंखा सचिन सच ने अपने पिताजी की याद में लगवाया, और दूसरे पंख पे दूसरे का नाम लिखा होगा। यानी एक पिता के तीन बच्चे थे, तीन बच्चों ने मिलकर एक पंखा दान किया और तीनों पर नाम लिखवाया पंख। ये परोपकारिता है। हाँ, ये भी हो सकता, बीच में जगह भी है। तो देखिए, मतलब ये हमारी एक्सप्लॉयटेशन है ना। और हमने देखिए, स्त्री के विवाह के समय भारतीय संस्कृति में जब स्त्री का विवाह होता है, स्त्री तो नहीं, कन्या का विवाह होता है, तो उस समय नहीं नहीं मुझे अच्छा लगता है आप हंसे तो, यानी इसके साथ मुझे एक एश्योरेंस भी मिलती है कि आप बोर भी नहीं हुए, थके भी नहीं और घड़ी भी नहीं देखेंगे आप। सो इसीलिए चलेंगे, कोई बात नहीं, चाय तो 10 मिनट में पी लेते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे जो पीते ही नहीं है। मैंने कईयों से कई बार पूछता हूं, भाई साहब चाय? मैं तो पीता ही नहीं बहन जी, मैंने कभी पी ही नहीं है। तो फिर आधे घंटे के ब्रेक की जरूरत भी क्या है, बैठे हैं ना यहां पर। तो जो पियेंगे उनको 10 मिनट मिल जाएंगे, डोंट वरी। सो देखिए, तो विवाह होता है उसमें, उस संस्कृति में भी हमारे जो है एक रस्म होती है, और उसको नाम क्या दिया? कन्यादान। कन्यादान, अरे बाबा, कई बार बड़ा अजीब लगता है, कन्या का दान कर रहे हैं आप, बड़े कितने महान हैं। यानी देखिए, कभी आपने कहा बच्चे का, लड़के का दान करे ना, कभी बेटे का दान करे ना, कन्या का दान कर, बेटे का दान करके दिखाओ ना, बेटा दान, पिता दान, वो करे ना, कन्या का दान हो रहा। यानी वो एक बुराई है ना, क्योंकि इसके पीछे आप देखिए, हमने स्त्री को, कन्या को, लड़की को इन्फीरियर माना है ना अपनी सोसाइटी में,
अपनी सोसाइटी में उसे एक वस्तु माना है ना, वस्तु उठाई दान दे दी। भिखारी आता है ना दरवाजे पर, अरे दे दो इसको रोटी, दे दो, जेब से 5 रुपए निकाले दे दो, है कन्या है ले जाओ, ये ऐसे देखिए। नहीं नहीं बहन जी, नहीं नहीं आप क्योंकि नहीं नहीं आप ब्रह्मा कुमारी जो है ना, आपको पता नहीं है ये बात जो है वास्तव में। अब ये नहीं हो सकता ना कि अब मैं सुनिए 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 प्लीज, अगर मैं हरियाणा में हूं और हरियाणा छोड़ के आपके आंध्र प्रदेश या कर्नाटका में आ जाऊं, मेरा राशन कार्ड नहीं बनेगा? बनेगा ना। और मैं अगर एक में विवाह करके आ जाता हूं, मान लो सॉरी 65 की उम्र हो गई, लेकिन फिर भी स्टिल ऐसा अगर होता है तो क्यों नहीं बनेगा? अच्छा बाद में बात करते हैं। सो ऐसा है कहते हैं, ऐसा है, लेकिन चलिए ये भी एक बुराई है, होनी नहीं चाहिए, राइट। सो जैसे आपने कहा फिल्म ट्रॉफी, यानी बात जो कहना चाहता हूं, परोपकारिता का नाम तो परोपकारिता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उसमें? क्या सच में हम परोपकारी हैं? आर वी रियली गिवर्स? क्या हम सच में दाता हैं या ढोंग कर रहे हैं दाता होने का? जैसे मैंने पंखे का ये बताया, ढोंग ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये दिखावा है, आडंबर है ना। और चाहे इसको हम कुछ भी कहें, लेकिन दिस इज नॉट ए वैल्यू। मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में स्त्री के साथ क्या किया जा रहा है? यानी इज शी नॉट बीइंग एक्सप्लॉयटेड? चाहे कोई भी हो, कोई कितना भी एजुकेटेड है हमारे भारतीय समाज के अंदर, स्त्री की हालत अच्छी आज भी नहीं है। अच्छे से अच्छे परिवारों के अंदर नहीं है, अच्छे से अच्छे परिवारों के अंदर शी इज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिचुएशन ऑफ द फैमिली। कितनी बहनों को, कितनी माताओं को पता है कि उसके पति के पास कितने पैसे, कहां कहां जमीन है, कहां कहां FD है, कहां कहां बैंक अकाउंट है, किस बैंक अकाउंट में कितना है, किस जगह बैंक में लॉकर रखा हुआ है, और किस लॉकर की चाबी किसके पास है? बहुत सी बहनों को नहीं पता है। वो तो देखिए थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आएगा ना, परिवर्तन थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन वो ओवरऑल नहीं है। उसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन आज भी मैं अगर आपको कहूं, नहीं नहीं मैं अगर आपसे कहूं कि आई नो ऑफ मैनी मैनी ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयड प्रोफेशनल विमेन हु हैव बीन बीटन बाय देयर हस्बैंड्स, ब्लडी हस्बैंड्स। आई नो प्रोफेशनल विमेन, एम्प्लॉयड विमेन, एजुकेटेड विमेन, दे हैव बीन maltreated बाय देयर हस्बैंड्स। और वो बहनें भी, वो औरतें भी जो इस जगह मेरी जगह खड़े होकर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लेक्चर देती हैं और घर जाकर उनकी भी पिटाई हो जाती है। तो, नहीं, बात मजाक की नहीं है, सीरियस है, गंभीर है। मैंने ऐसे ही एक अपने कुलीग बहन को ऐसे ही कह दिया एक बार, मैं कहा बहन जी कैसे हिम्मत हो जाती है आपके हस्बैंड की, हाउ डेयर ही? भाई साहब नहीं ऐसे, मैं कैसे, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ऐसी लड़कियों को तैयार करेंगे आप अपने जैसी? मुझे तो दुख होता है, आप छोड़ दीजिए नौकरी, जाइए, या आप हिम्मत करिए कि जिस वक्त हस्बैंड हाथ उठाए पकड़ लीजिए हाथ उसका, कैच होल्ड ऑफ हिम एंड टेल हिम, अब हाथ उठा के देखो, प्यार से समझाओ, नहीं समझता तो उल्टा थप्पड़ मारो। यस 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 इट इज। बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर आपके पास लाते हैं ना, पति परमेश्वर, टू हेल विद इट, मेरे जैसा आदमी पति परमेश्वर, व्हाट इज दिस, परमेश्वर अपने आप को कहने वाले, नो कैन नॉट बी। सो दिस इज बैड। यहां विमेन खुद, हम दोपहर बाद बात करेंगे इस इशू पर, यानी वहां खुद भी जिम्मेवार हैं, खुद भी जिम्मेवार हैं। तो अगर आप सांप पालेंगे तो किसी ना किसी दिन तो काटेगा, आप कितना ही कर ले। मैं हस्बैंड को सांप की तुलना नहीं दे रहा, बुरा नहीं माने, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन स्टिल मैं कहता हूं कि अगर आपको सांप पालने भी हैं तो सांप को ट्रेन करने का तरीका आना चाहिए, टेम करने का तरीका आना चाहिए। आप जहर निकाल के रखें, अगर आप उसके दांत तोड़ देना, چلیے ایک اور بات جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، نہیں کیونکہ سانپ کا زہر تو تبھی نکلتا ہے جب دانت توڑتے ہیں، لیکن پلیز فار گاڈ سیک ایسی کوشش نہ کرنا، اور کر جا کے ایسا کرے اور میرا نام لے لے، انہوں نے کہا تھا تو سو چلیے لاسٹلی اور دیکھیے ہماری سوسائٹی کے اندر ایسٹرولوجی اور بلائنڈ فیتھ کتنا ہے. ایسٹرولوجی بلائنڈ فیتھ اندھ وشواس، اور ہمیں جو ہے وہ مہورت شبھ مہورت ہست ریکھا دیکھنا، پنڈت جی میری ریکھا دیکھنا میرے، ارے بابا تیری ریکھا کہاں سے دیکھوں، شنی کی دشا تو بہت اچھی ہوتی ہے نا، برہسپتی کی دشا ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھو نا اس کے اندر. سو اندھا دھند ہم چل رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنی جنم پتری کو دیکھ رہے ہیں. ارے اپنے کو دیکھنا، تو اتنا 6 فٹ کا آدمی گھوم رہا ہے اس کو نہیں دیکھتا، تو 2 انچ کے کاغذ کو دیکھ رہا ہے. تو جنم پتری مجھے ایک بار میرے وہاں اس شہر میں بڑا ایک اچھا دوست میرا پیٹرول پمپ کا مالک، اس کا پتنی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کچھ، تو مجھے کہنے لگا سر، میں کہا بھائی میں تو ان باتوں نہیں، آپ کالج میں تھے نا، آپ کے کالج کے لائبریری میں ایک وہ امپلائی ہے اور وہ بہت اچھا. میں نے کہا بھائی میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یقین مانیے آئی ایم ون سچ پرسن جس نے اپنی شادی پہ بھی کبھی جو ہے وہ ایسٹرولوجی میں وہ شبھ مہورت نہیں نکلوایا، اپنے 2 بچوں کی شادیاں کی میں نے، جن کے یہاں ہوئی مطلب شادی ان کو کہا آپ نے نکالنا مہورت نکال لو، مجھے ڈیٹ بتا دینا، بس 2-3-4 ڈیٹ بتا دینا مجھے، جو اچھی لگے گی وہ ٹھیک ہے. نیور آئی ہیو ناٹ ڈن اٹ، اور بھگوان کی کرپا سے میرا پتنی کے ساتھ پچھلے 40 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، میرے بچوں کا جو ہے آپس میں نہیں جھگڑا ہوا، اچھا چل رہا ہے نا. تو کس پنڈت کو مانوں میں سب سے بڑا پنڈت تو میں خود ہوں نا، سو نیچرلی ہوں نا، کیا دقت ہے اس میں. سو اس نے زبردستی مجھے کیا، ہم چلے گئے، اس نے جو کچھ بتایا ہم آ گئے. اس کے بعد ایک بار پھر کہنے لگا جی چلیں، ان دا مین ٹائم میں یہاں آیا ہوا تھا، پھر دوبارہ گئے کہنے لگا بھائی صاحب ادھر چلنا ہے، چلو گئے. تو وہ ملا مجھے، جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دھیان دیں، تو وہ ملا، میں نے دیکھا ارے بھائی کیا بات، بڑے اداس ہو دکھی ہو، نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں آپ کام بتائیں. بھائی کچھ تو ہے بولے تو نہیں، میں نے پھر ضد کی، کہتے آپ کو پتا نہیں ہے. میں کیا ہوا، کہتے 10-12 دن پہلے ڈیٹ بتائی اس نے، کہتے میرے بیٹے کا ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا ارے سبھاش، اس کے بیٹے کا نام تھا، میں سبھاش کی ڈیتھ ہو گئی، ہی واز جسٹ اباؤٹ 35 ایئرس. کہتا ہاں ہم سوری، تو بعد میں بات کریں گے، چھوڑو. نہیں 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 آپ، میں کہا نہیں آج تو ہم بات نہیں کرتے، پتہ لگ گیا تو اوکے. بات چیت کرنے کے بعد 10-15 منٹ بیٹھنے کے بعد اس کے پاس باہر آئے ہم، میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی تو اس کے پاس آ رہا تھا، مجھے بھی 3-4 مہینے سے گھسیٹ رہا ہے تو ادھر روز، جو آدمی یہ نہیں جان سکا کہ اس کے بچے اپنے بیٹے کا ڈیتھ ہونے والی ہے، وہ کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے ایسی کرونک ڈیزیز نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں پتا کر سکا، وہ یہ بتا دے گا تمہارا پتی اور پتنی کا کیسے چلے گا، حد ہو گئی. میں نے اسے کہا، میں کہا آج کے بعد مجھے تو مت لانا، تم نے آنا ہو تو آ جانا. سو یہ ہے ایسٹرولوجی ہماری، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط بتاتے ہیں یا کیا بتاتے ہیں، لیکن اسٹل دس از ناٹ اے سائنس، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اندھا دھند بھانگتے ہیں، اندھ وشواس کرتے ہیں. وہ کرنی ہے، میرے دادا جی نے کہا تھا یہ کرنا ہے، میرے پتا جی نے کہا تھا یہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے بھائی. سو یہ چیزیں بھی ہمیں ختم کرنی. اور پھر ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے نا، بہت بڑی چیز آج کے زمانے میں ہو گیا، جہاد، دیٹ از ریلیجیس فنڈامنٹلزم. ہمارا دھرم آپ کے دھرم سے بہت اچھا ہے، ایک سٹیپ ہے یہ، اس سے دوسرا سٹیپ یہ ہے جہاں ہم ہیں وہاں آپ کو آنے کا ادھیکار نہیں ہے، اور تیسری بات اگر ہم ہیں تو آپ نہیں ہوں گے، دیٹ از واٹس ہیپننگ. کافروں کو زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، آئیدر دے شوڈ کنورٹ اور دے شوڈ لیو،
दैट इज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो ये हो रहा है। और फिर नेगेटिव पेरेंटिंग, पेरेंटिंग भी एज पेरेंट्स भी हम अच्छा रोल नहीं करते। बहुत बार हम अथॉरिटेरियनिज्म, बच्चे को कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, नो आर्ग्यूमेंट, फिनिश, मैंने कहा है। बच्चे की हिम्मत नहीं होती, पापा क्यों कहा है आपने, जबान लड़ाता है आगे से, थप्पड़ पड़ता है। अब बेचारा छोटा सा बच्चा, दो चार पांच दस बारह पंद्रह साल का बच्चा क्या करेगा, कहीं जा भी तो नहीं सकता ना, थप्पड़ खा के चुप कर जाएगा बेचारा। हाँ, लेकिन कई जगह पर अमेरिका जैसे देश के अंदर तो अधिकार है ना छोटे बच्चों को भी, कि वो जो है अपना फादर ने जरा कुछ किया, बच्चे टेलीफोन उठा लेते हैं पुलिस को, 100 मिलाया, हेलो मेरा पापा मुझे मार रहा है, माय फादर इज बैशिंग मी, पुलिस पहुंच जाती है और बाप को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर, हमारे इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सिख फैमिली उतरी, और उस फैमिली के अंदर पति पत्नी थे और उनका 10-11 साल का एक बेटा था। तो जैसे ही बाहर आए, इमिग्रेशन से बाहर निकले, तो वो सरदार जी ने अपने बच्चे को देख मारा एक थप्पड़। सारे हैरान, ये क्या हो गया, और कहते ले तू अब पुलिस को कर। कहता मैं इतने सालों से दुखी हो रहा था, मैं खुल के तुझे मार भी नहीं सकता, अब मारूंगा तेरे को। सो वो अथॉरिटेरियनिज्म इतना होना नहीं चाहिए, पेरेंटल अथॉरिटेरियनिज्म भी नहीं होना चाहिए, और लैक्सिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपस में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो नॉन कम्युनिकेशन है ना, यानी लेकिन बच्चों की आज के हमारे घरों के अंदर बच्चों की हिम्मत भी नहीं होती कि वो माँ बाप के साथ बात कर सके, खुल के अपनी बात कह सके, और माँ बाप भी जो है वो उनको कहने नहीं देते हैं। So, ये चीज जो है कम्युनिकेशन नहीं है, और फिर कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप खुद सोचें, आपके बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ गए, उसके बाद उन्होंने किस स्ट्रीम में दाखला लेना था, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, इसका फैसला किसने किया? अक्सर माँ बाप करते हैं, माँ बाप डिसाइड करते हैं मेरा बेटा तो मेडिकल में जाएगा। आपने बेटे से पूछा, बच्चों को पता क्या होता है, उनको क्या पता, हमने बता दिया ना वो करेगा, बस वो क्या होता है, फिर बच्चे फ्रस्ट्रेट होते रहते। मेडिकल बनने का गुण, मेडिकल में जाने का गुण नहीं था, जो गुण था उधर मां बाप ने नहीं जाने दिया, तो फिर सारी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में कटेगी। डॉक्टर बन नहीं सकेंगे, दूसरा बन नहीं पाए, तो वही रह गए ना। सो इस तरह का जो है वो जीवन चलता है। और फिर दूसरी बात एक और भी है कि हम अपने बच्चों को लाइफ का एक्सपोजर भी नहीं देते। हम बच्चे को बताते हैं जो कुछ, जैसे देखिए ना कि इस विंडो से बाहर क्या हो रहा है, बच्चे को साइड पे बिठा दिया, मैं देख के बता रहा हूं बेटा अब ये हो रहा है, अब वो, दैट इज व्हाट आवर एजुकेशन इज। बच्चा सिर्फ वही लर्न करता है जो मां बाप देते हैं, स्क्रीन होके आता है। और फिर अगर कोई कह दे जी बच्चों, अरे नहीं सर आप बच्चे बिगड़ जाते, आपको नहीं पता ना बच्चा बिगड़ जाएगा ना, गलत संगतों में पड़ जाएगा ना। आज भी बहुत सारे मेरे से कह देंगे सर वाकई ये होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चा बुद्धि है ना, उसको समझ क्या है। लेकिन पूछें आपकी बुद्धि अडल्ट हो गई, या सिर्फ शारीरिक उम्र के बाद भी आपकी बुद्धि तो वहीं की वहीं है, वो उसका क्या। एंड क्रिटिकल थिंकिंग की हमने बात की, क्विकली एक बात यही कहूंगा कि देखो हमें एनालाइज करने का और प्रायोरिटाइज करने का, सोचने का एक तरीका अपने अंदर, एक साहस, एक हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और उन सब के साथ जैसे शुरू में हमने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की थी, उसमें मीडिया भी जो है, और हम अपना सेल्फ का सेंसरशिप भी करें, अपने को भी क्रिटिसाइज कर सके, जान सके, लेकिन इस सबसे ऊपर ये हो कि हमारी एक कम्युनिकेशन स्किल भी हो, कि हम अपनी बात कह पाए, बता पाए,
कि क्रिटिकल थिंक के मैंने सोच तो लिया। आप सबको लग रहा है टीचर बहुत ज्यादती कर रहे हैं, 11-20 हो गए लेकिन अब नहीं कर रहे, लेकिन कोई कहता तो नहीं सर बंद करो अब, हो गया 11-20 हो गए, कब तक हमारा सिर खाओगे, कब तक हमारा सिर खाओगे, बंद करो ना। ओम शांति। देखो आपने नहीं कहा मैंने फिर कर लिया, मैंने कहा चलो कोई कहे अब 10 मिनट चाय पी सकते हैं, यू आर अलाउड, आप चाहें तो 11:40 पे आ जाएं, हैं 10 मिनट आपको। वैसे आपकी नेक्स्ट टीचर बैठी हैं, वो हंस रही हैं कि सर कैसे दे रहे हैं मेरे दस। बहन जी इंदिरा बहन आई एम अलाउड ना, ओके थैंक यू, ओम शांति। एक एक मिनट बैठ जाइए प्लीज, इतनी देर बैठे रहे हैं, थोड़ी बाबा को, बाबा पूछ रहा है कि ऐसे कैसे भाग रहे हैं मेरे बच्चे, बाबा को हेलो तो करेंगे ना। ओम शांति।